ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग के प्रारंभ बिंदु खोखना को लेकर विवाद पर डीपीआर संशोधन कर आगे बढ़ने का प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का निर्देश। फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन को सफल बनाने का राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का आग्रह है। निर्वाचन से संबंधित मत सर्वेक्षण कर परिणाम सार्वजनिक न करने का कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी का अनुरोध। काठमांडू उपत्यका में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर, विश्व का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर के रूप में सूचीबद्ध। और बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री तारिक रहमान द्वारा शपथ ग्रहण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग के प्रारंभ बिंदु खोखना से जुड़े विवाद को फिलहाल स्थगित रखते हुए वैकल्पिक योजना के साथ आगे बढ़ने का निर्देश किया है। ललितपुर के खोखना में धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर और आस्था पर प्रभाव पड़ने की आशंका को लेकर स्थानीय समुदाय द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने के संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्की ने आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में हुई बैठक में वैकल्पिक योजना पर आगे बढ़ने का निर्देश किया। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि बड़े निवेश वाली परियोजना अनिश्चितकाल तक लंबित रहने पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, इसलिए इसे शीघ्र संचालन में लाने के लिए समाधान तलाशना आवश्यक है। उन्होंने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में संशोधन कर विकास निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी न करने और विवाद में उलझे न रहने को भी कहा। प्रधानमंत्री कार्की के निर्देशानुसार खोखना से 3.3 किलोमीटर नीचे फर्सी डोल में टोल प्लाजा निर्माण करने के लिए डीपीआर में संशोधन किया जाएगा। इस अवसर पर नेपाली सेना की ओर से परियोजना की अब तक की प्रगति, समस्याओं और सरकार से अपेक्षाओं के संबंध में ब्रीफिंग दी गई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि नेपाल और नेपालियों की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शेरपा समुदाय की उल्लेखनीय भूमिका रही है। नेपाल शेरपा संघ द्वारा 1153 ग्यालपुर लोसार नववर्ष के अवसर पर आज शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि मौलिक नेपाली पहचान को अक्षुण रखते हुए राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ बनाना हम सभी का साझा दायित्व है। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि सुशासन के माध्यम से समृद्धि प्राप्त होने पर ही देश में शांति, स्थिरता और राष्ट्रीय एकता और मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में जनता की राय लेने का उपयुक्त माध्यम निर्वाचन है, इसलिए आगामी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन को सफल बनाने का आग्रह किया। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने निर्वाचन से संबंधित मत सर्वेक्षण कर उसके परिणाम साझा न करने का आग्रह संचार माध्यमों से किया है। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रविधि के दुरुपयोग से निर्वाचन की निष्पक्षता ही ध्वस्त होने का जोखिम है, इसलिए इस विषय पर सभी को गंभीर रहने की आवश्यकता है। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भंडारी ने एआई के प्रयोग से तैयार किए गए भ्रामक सामग्री को सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने और न कराने में सहयोगी भूमिका निभाने का भी आम संचार माध्यमों सहित संबंधित पक्षों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मतदान से पहले ही मतदाताओं की बातचीत के आधार पर हार जीत का अनुमान लगाने या मत सर्वेक्षण कर परिणाम सार्वजनिक करने की प्रथा अपनाई जा रही है, जिस पर आयोग का गंभीर ध्यान गया है। उन्होंने परिणाम पहले से घोषित कर उम्मीदवारों को हतोत्साहित करने और प्रतिस्पर्धा के वातावरण को प्रभावित करने वाले कार्य न करने का आग्रह किया। वन तथा वातावरण मंत्रालय और ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के बीच आज समन्वय बैठक संपन्न हुई। बैठक वन मंत्री माधव प्रसाद चौलागाई और ऊर्जा मंत्री अनिल कुमार सिन्हा की सहभागिता में आयोजित हुई। इसमें ऊर्जा तथा जल विद्युत परियोजना से संबंधित वन क्षेत्र के भीतर भूमि उपयोग अधिकार स्वीकृति प्रक्रिया तथा प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण रुके हुए विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर पशुपति नाथ के दर्शन के लिए आए हुए नागा बाबा सहित साधु संतों को आज दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। महाशिवरात्रि के दिन के लिए फागुन कृष्ण एकादशी के दिन पशुपति नाथ मंदिर आए हुए साधु संतों की गुठी संस्थान और पशुपति क्षेत्र विकास कोष द्वारा फागुन अमावस्या को विदाई करने की परंपरा है। विदाई के लिए संस्थान ने करीब 30 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। आज दोपहर को 178 पर रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक 191 पहुंच गया। ये स्थिति सभी के लिए अस्वस्थकर है, खासतौर पर बच्चों, ज्येष्ठ नागरिकों और श्वास प्रश्वास व दिल के मरीजों पर इसका अधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। AQI के मुताबिक आज काठमांडू विश्व के तीसरे प्रदूषित शहर के रूप में दर्ज रहा। भारत की राजधानी दिल्ली 229 AQI के साथ पहले और पाकिस्तान का लाहौर 203 AQI सहित दूसरे स्थान पर सूचीकृत हुआ। वातावरण विभाग के महानिदेशक ज्ञान राज सुवेदी ने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ेगा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा का समय तालिका आगामी वैशाख 14 गते लागू होने के लिए सार्वजनिक किया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय सानोठी में भक्तपुर ने आज एक सूचना जारी कर बताया कि वैशाख 14 से 27 गते तक कक्षा 12वीं के नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड के अनुसार परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक संचालित होगी। इससे पहले वर्ष 2082 की माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE आगामी चैत 19 गति से आयोजित होने का कार्यक्रम पहले ही साझा किया जा चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। बांग्लादेश में नए मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ ले ली हैं। शपथ समारोह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और राष्ट्रपति मोहम्मद साहबुद्दीन की मौजूदगी में हुई। BBC बंगाल के मुताबिक इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह खुले आसमान के नीचे आयोजित किया जा रहा है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव हुए थे, जिनमें BNP गठबंधन ने 212 सीटें जीतकर दो तिहाई बहुमत हासिल किया, जबकि जमात ए इस्लामी गठबंधन को सिर्फ 77 सीटें ही मिल पाई। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार 16 महीने के बाद निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंप रही है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पहले ही सोमवार रात को विदाई भाषण में पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग के प्रारंभ बिंदु खोखना को लेकर विवाद पर DPR संशोधन कर आगे बढ़ने का प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का निर्देश। फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन को सफल बनाने का राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का आग्रह। निर्वाचन से संबंधित मत सर्वेक्षण कर परिणाम सार्वजनिक न करने का कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी का अनुरोध। काठमांडू उपत्यका में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर विश्व का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर के रूप में सूचीबद्ध। और बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री तारिक रहमान द्वारा शपथ ग्रहण। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।